86要高不高？
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhu Bana, Prabhu Bana, Prabhu Bana, Jai Prabhu Bana.Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva.
Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva.जय ओम विश्वपाद परमहंस विवाद का चरस्तु तत् श्री श्रीमद्भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद की मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई जमुना माई की श्याम कुंड राधा कुंड की गिरिराज गोवर्धन जी की हिताई गौर प्रेमानंद ये पूरे मेरा रोड में इतने हो गया आप जितने बैठे हो हमारे पास एक मिनट का टाइम नहीं हमारे पास 200 लेक्चर रहता है मैं इसलिए आया कि यहाँ गैदरिंग अच्छा होगा ये चार आदमियों में भी मैं लेक्चर नहीं देता छोड़ दिया मैं बाहर कौन भटक रहे हैं सब बुला के लाओ ना कुछ इधर उधर गप मारना है मैं अभी लेक्चर नहीं वहीं जाता हूं जहां पैकअप हो एकदम उससे मैं पहले पूछ लेता हूं भीड़ है कि नहीं है क्योंकि हम पैसा तो लेते नहीं फ्री में सेवा करते हैं कम से कम भीड़ तो होनी चाहिए अपने को दो तीन घंटा बोलना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे, वही हमारी कमाई है, बाकी अपने को तनख्वाह तो मिलता नहीं। जितने पकड़ पकड़ के लाइए किधर किधर बैठे, बहुत लोग थे अभी इधर। भक्त भी एक भी भक्त नहीं, मैं सुन भागवत क्लास में भक्त रहे। श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम
जय
जय
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय
जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
रघुपति राघव राजा राम
रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम
पतित पावन सीताराम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
कौ कल्ला के प्यारे राम
कौशल्या के प्यारे राम
दशरथ राज जुमाने
राम
दशरथ राज जुमाने राम राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम ज्यादा लोग रहते हैं तो कथा करने में आनंद आता है, गिने चुने रहते हैं तो फिर हम भी गिने चुने हिसाब से ही बोलता हूं, क्योंकि हमारी देखिए किसी व्यक्ति के पास हीरे जवाहरात सोने के जेवर हैं, सबको दिखा देगा या तो कहीं भी दिखा देगा? जिधर ढंग के लोग रहेंगे, ठीक भीड़ भाड़ रहेगी, उधर ही शो करेगा ना। तो हमने पैसा तो कमाया नहीं, एक पैसा हमारी जेब में नहीं है, 22 साल हमको इस्कॉन में हो गया, तो कम से कम कथा सुनने वाले तो होनी चाहिए, अपनी कमाई तो वही है ना, पर लोग सुधारना नहीं सुधारना हमको। तो जितनी ज्यादा लोग कथा सुन लेते हैं उतना कमीशन हमारा हो जाता है और अपना परलोक का रास्ता हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। पर अभी बहुत हमारे पास इतनी कथाएं हैं, हम करें तो साल में 200 भागवत कथा हमको करना पड़ेगा। और बनवाली वो बोलता है आ जाओ, हमने कहा भीड़ है, हम समझे पहले दोपहर का लेक्चर होगा, हमने समझा सर रामनवमी है, दोपहर का भी सुबह ही होगा, तो कथा में सबको बैठना या गुड बाजी अच्छा नहीं है। किसका लेक्चर है? अरे भगवान का लेक्चर है। कौन लेक्चर दे रहा है? चेहरा देखोगे क्या? मुंह किसी का भी हो, चेहरा किसी का, वो कथा तो भगवान की है ना, तो चेहरा देख के बात अच्छा है। प्रेसिडेंट साहब कमल लोचन बाबू नहीं है, इधर बनवारी बाबू नहीं है, आदियोगी बाबू, आदियोगी हमको बुलाया था वो नहीं है, इधर ये अभी आ गया, अभी इसका उम्र लंबा हो गया, 1000 साल हो गया। मम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रीतैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वकलांतिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं स्वगण रघुनाथानवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आगे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णु कृष्णते नहीं नमो रूपा जी का नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सर्वकृतं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरवभक्तवृंद। हरे तीन बार बोलो, तीन बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तीन बार इसलिए बोला कि पानी पीना था, पानी पीने का टाइम मिल गया। तो आज श्री राम नवमी है, भगवान के 24 अवतार हैं, प्रथम स्कंद में अवतारों की कथा है और जिसमें से 23 अवतार हो गए, एक अवतार बाकी है। कौन सा अवतार बाकी है? कल के अवतार अभी होगा बाद। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिचित महाराज से कि भगवान के 23 अवतारों में दो अवतार मुख्य हैं, कहते हैं एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। रामचंद्र जी गंभीर हैं और कृष्ण चंचल हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम। एक का जन्म दिन में 12 बजे हुआ है, दूसरे का ठीक रात के 12 बजे हुआ है। एक मर्यादा बता रहे हैं, दूसरी भक्ति बता रहे हैं, प्रेम। कभी कभी व्यक्ति संसार में भजन नहीं कर पाता। का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ के आ जाओ, एकदम हो पाएगा? नहीं। कोई कहे अपना सब कारोबार छोड़ के इधर मंदिर में आ जाओ कल सुबह, होगा? तो उससे भगवान मर्यादा सिखाते हैं। ठीक है, जब तक नहीं आते सब छोड़ के, जिधर हो उधर मर्यादा में रहो। मर्यादा क्या है? मां बाप की सेवा करना, ये भी भजन की एक श्रेणी है। अरे क्या देख रही है? बैठना अंदर आके माता जी, तो देख रही है बंदर का नाच चल रहा है। पत्नी के साथ कैसा रहना, भाइयों में प्रेम, रिश्तेदारों में कैसे, सगे संबंधियों के बीच में। एक प्रशासक हो, राजा हो, तो प्रजा में कैसे। भगवान एक एक बात प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। और रामावतार में भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें से कुछ लीलाओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। कई लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन कृष्णावतार में एक भी लीला को जीवन में नहीं उतार सकते। उतार सकते हैं? 3 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, हम लोग मार सकते हैं? 7 दिन के कृष्ण ने शकटासुर को मारा, हम लोग मार सकते हैं? 7 साल के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया, हम लोग उठा सकते हैं? ईंट भी नहीं उठा सकते। तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं ये सब चिंतन की लीलाएं हैं, और राम जी की लीला भी सब चिंतन की हैं, लेकिन कुछ लीलाएं अपने जीवन में उतार सकते। जिस एक पत्नी व्रत हो, जिसके साथ 7 फेरे लगाए उसी के साथ घूमो जिंदगी भर, भाइयों में प्रेम, आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम कब होगा? भाई भाई में प्रेम कब होगा? और झगड़ा कब है? प्रॉपर्टी का, इसको ज्यादा हो गया मुझे कम हो गया। प्रेम कब होता है? तू ही ले ले सब, तू ही संभाल, मेरे कुछ नहीं। चारों भाइयों में ऐसा प्रेम है। भरत महाराज कहते हैं सब आप, और राज्य आसन में बैठते हैं, भगवान के खड़ाऊ रखते हैं तब बैठते। इसी प्रभु मर्यादा सिखाते हैं। और एकदम ठोस बात की जाए गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखी है, श्री राधा के धारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो, उसमें लिखा है कि भगवान में 64 गुण, भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 64 गुण हो, 16 कलाएं हो, 6 ऐश्वर्य हो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की किताब में ऐसा लिखते हैं कि रामचंद्र जी में 1.5 गुण कम होता है। कौन सा 1.5 गुण? एक तो मुरली नहीं बजाते, पूरा गुण कट हो गया। दूसरा रास नहीं करते, रास किया यानी बहुत सारी महिलाओं के साथ लड़कों के साथ रास नहीं करते, एक वक्त नहीं बचा तो आधा गुण ये काट दिया। तो सारे 62 गुण रामचंद्र जी में होते हैं ऐसा एकदम ठोस आप गौड़ी संप्रदाय की बात अगर आप करेंगे। और लेकिन किसी रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव के सामने कहेंगे तो एकदम भड़क जाएगा, बोला हमारे भगवान में 1.5 गुण कम बता दिया। तो कभी कभी भगवान लीला करते हैं तो अपने गुण को प्रकट नहीं करते, ऐसा रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव कहते हैं। मनु और शत्रुपा से कथा शुरू होती है। सतयुग में मनु और शत्रुपा, हम सब लोग मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहलाए, और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं आदम और हवा की संतान है, तो आदम मतलब मनु महाराज, हवा मतलब शत्रु। तो मनु महाराज ने अपनी पत्नी के साथ 23,000 साल तक तप किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी रामचरितमानस में वर्णन है। अभी हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने थोड़ा चैतन्य रामचरितमानस के बारे में कहीं लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो एकदम ठोस है रामचरितमानस की चर्चा ही नहीं करने का। लेकिन हम मैं रामचरितमानस पूरा पढ़ा, 70% रामचरितमानस भागवत से लिया गया है, 70%। तो इसलिए मैं मिला जुला के थोड़ा वाल्मीकि रामायण, थोड़ा रामचरितमानस, खम्ब रामायण, कदम्ब रामायण, आनंद रामायण, सब करोड़ रामायण होती हैं, रामायण शतकोटि अपारा, सब करोड़ रामायण। तो 23,000 साल तपस्या के राजा ने, और तपस्या का उद्देश्य है भगवान को पुत्र रूप में पाना। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए, उससे पहले कई देवी देवता प्रकट हुए। तो मनु महाराज देखते थे इंद्र है, आंख बंद कर देते क्योंकि वो देवता से बात करना नहीं चाहते, सिर्फ भगवान से बात करना चाहते। कई देवता लोग आए, मनु महाराज से कहा आपकी तपस्या से प्रसन्न है, बर मांगो। आंख खोल के देखते तो फलाना देवता है, मेरा काम नहीं कर सकता, तो आंख बंद कर देते, कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब देखा कि भगवान आ गए, तब मनु महाराज ने अपना मुंह खोला, दान शिरो मणि कृपा निधि, भगवान ने कहा बर मांगो, तब राजा ने बर मांगा, दान शिरो मणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाव, चाहई तुम्हें समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। हे दानियों में शिरोमणि, मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए, अब आपसे क्या छुपाना। अब भगवान ने विचार किया कि मैं अपने जैसा लड़का कहां से लाऊं, क्योंकि भगवान जैसा कोई दूसरा है नहीं। देख प्रीति सुनी बचन न बोले, एव मस्त कृपा निधि बोले, आप सरिस खोजूं कहां जाई, निरपति इतना नहीं होभ में आई। यह राजन ऐसा ही होगा, लेकिन अब मैं अपने जैसा लड़का ढूंढने के लिए कहां जाऊं, इसका मतलब क्या कि मुझे भगवान को ढूंढने में कोई टाइम लगता है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि मुझ जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं किधर से ढूंढ के लाऊं, आप सरिस खोजूं कहां जाई। इसलिए राजन निरपति तनय हो मैं आई, मैं खुद ही आपका पुत्र बन के आपके यहां आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। सतयुग की बात है। तो यही मनु महाराज और शत्रुपा, त्रेता में महाराज दशरथ और कौशल्या हुए। अयोध्या इनकी राजधानी है जिसे अवध भी कहते हैं, फैजाबाद आप लोग गए होंगे। अयोध्या कहते हैं जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया जाता उसे अवध कहते हैं, और जहां कभी भी युद्ध न हुआ हो, विशेषकर अधर्म का युद्ध न हुआ हो, उस जगह का नाम अयोध्या कहते हैं। इस संधि विच्छेद है इसका। और महाराज दशरथ कहते हैं जिनका रथ दसियों दिशाओं में निर्वाध गति से बिना रोक टोक के चलता हो उनको महाराज दशरथ कहते हैं, अतः पूरे भूमंडल के सम्राट हैं। तीन पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि महाराज दशरथ की 200 पत्नियां और कई रामायण वाला अलग अलग। अब बुढ़ापे तक इनकी संतान नहीं हुई, अपने गुरु वशिष्ठ के पास से गए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। अब यहां ऑर्गन वगैरह नहीं है, नहीं तो ये गाया जाता है, बहुत सुंदर चौपाइयां गाई जाती है। बिना ऑर्गन के उसके गाएंगे तो हंसी हो जाएगा, जोकर बन जाएंगे, उसे खड़ी बोली बोलना ठीक। गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। अपने गुरु जी से निवेदन किया कि मेरा कोई वारिस होगा कि नहीं होगा, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चार लड़के होंगे। धरऊ धीर हो ये सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। आपके चार लड़के होंगे और तीनों लोकों में उनका नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगा। वशिष्ठ जी ने कहा आपको पुत्रिष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा, और पुत्रिष्ठ यज्ञ किया और उस यज्ञ का भाग रानियों को खाने के लिए दिया। एक भाग कौशल्या ने लिया, एक सुमित्रा ने, कैकेयी ने। रानियों में बहुत प्रेम है, पांच भाग हैं। तो फिर सब रानियों ने कहा दो भाग में से, अब रानी तीन है, भाग दो है, तो एक रानी दूसरी रानी को बहुत प्यार करती है, दूसरे का सुख चाहती है। इसलिए कौशल्या ने सुमित्रा से कहा बहन तुम एक और खा लो, कैकेयी ने भी सुमित्रा से कहा आप एक और खा लो, तो बड़ी और सबसे छोटी ने बीच वाली से कहा आप एक भाग और ले लीजिए। सुमित्रा ने एक भाग और लिया तो सुमित्रा ने दो प्रसाद खाए, कौशल्या एक, कैकेयी ने एक, तो एक भाग और रह गया। तो फिर उनमें बात विवाद हुआ, बहन तुम खा लो, जेठानी आप खा लो, देवरानी आप खा लो। तो इसी बात में वो आपस में एक दूसरे से कहते आप खाओ आप खाओ। इतने में एक चील आई और प्रसाद को उठा के लेके आकाश में चली गई। आकाश में उड़ रही थी, ठीक केसराचल पर्वत के ऊपर उस चील को कुछ कहने का मन हुआ है, मुंह खोलने का मन हुआ, जैसे उसने अपनी चोंच खोली तो प्रसाद गिर करके नीचे पेड़ के नीचे अंजनी माँ बैठी हुई थी, तो उसी गोदी में प्रसाद गिर गया। और उसने इसे शिव प्रसाद समझ के खा लिया, और उसी प्रसाद से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। शंकर सुवन की श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें चौपाई है। तो इसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। अपनी माँ के हाथ का भोजन करने के लिए शिवजी ने बंदर का रूप धारण किया कि पत्नी के हाथ का बहुत खाया, माँ के हाथ का नहीं खाया, क्योंकि पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन से माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होता। अगर माँ खाली नमक डाल के भी दे दे सब्जी में, खाली नमक फेंक दे ऐसे ही, आधा पका के दे दे उसका टेस्ट, और पत्नी अगर 50 मसाले डाल के भी दे, कुकर में 3 सीटी मार के भी दे, टेस्ट देख ली। क्योंकि एक में मसाले का टेस्ट होता है, दूसरे में मातृत्व का वात्सल्य का टेस्ट होता है। इसलिए मैंने अपने अर्धांगिनी का, सती का, पार्वती की सेवा बहुत ली, अपने माँ के हाथ का कभी नहीं खाया, इसलिए शंकर जी हनुमान बन जाते हैं और अशोक वाटिका में मां के कहने पर फल खाते। अशोक वाटिका में पूछते हैं ना सीता जी को, मैं बोलूं जी बहुत भूख लगी है कुछ खाने को, मैं फल खाना चाहता हूं। जब सब राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तब सीता जी को पूछने गए थे कि उसको मारूं या नहीं मारूं। तो जब सबको मारा बिना पूछे, जब भूख लगी सीता जी को पूछा, फल भी तो बिना पूछे खा सकते हैं, लेकिन इसी उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया है कि मेरी मां मुझसे कहेगी खा लो तभी खाऊंगा। सीता जी ने कहा यहां राक्षस लोग रहते हैं और ये आपको परेशान करेंगे, फल नहीं खाने देंगे। हनुमान जी ने कहा आप ये कहो कि फल खा लो, बाकी इन राक्षसों से मैं निपट लूंगा। तो सीता जी ने कहा खा लो, तो पूरा बाग अशोक वाटिका रावण की उजाड़ दी हनुमान कि मेरी मां ने मुझसे कहा खा लो इसलिए। और इधर तीनों रानियां गर्भवती हुई और तीनों के चार पुत्र हुए, कौशल्या जी से राम, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्राम। दिन के ठीक 12 बजे नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान, जैसे बाहर कथा करने वाले बोलते हैं जय। किसी का भी जन्म होगा कपिल भगवान की जय, बरा भगवान की जय। और पूरे अयोध्या में दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सुख से शांति का क्षण बड़ा होता है, शांति से आनंद का क्षण बड़ा होता है, आनंद से परमानंद का क्षण बड़ा होता है और परमानंद से ब्रह्मानंद का क्षण बड़ा होता है। आज अयोध्या में भगवान प्रकट हुए हैं तो वहां सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, आनंद ही नहीं है, परमानंद ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मानंद उमर पड़ा है ऐसा लगता है। और ठीक 12 बजे हुए और सूर्य ने जब दर्शन किया तो अस्त होना भूल गया। मास दिवस बा दिवस पुण्य मर्म न जाना, कोई रथ समेत रवि था के वो तो निशा कवन विधि हो। सूर्य अस्त होना भूल गए, ऐसा लिखा है कि एक महीना हो गया अस्त ही नहीं हुई, यानी रात ही नहीं हुई। अब इसका डिटेल तो कहीं होगा नहीं, त्रेता युग में होगी कि नहीं हुई, लेकिन शास्त्रों में इसका डिटेल है। तो चंद्रमा भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो चंद्रमा कब दर्शन करेंगे भगवान का? जब रात होगी, और रात हुई नहीं, एक महीना होगा। तो चंद्रमा ने भगवान से शिकायत की, ऐसा वर्णन है, पालने में झूल रहे थे भगवान, कहा कि सूर्य को बोलो ना जल्दी से अस्त हो, रात होगी मैं भी आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने पालने से कहा इस वक्त हमारा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, दिन के 12 बजे हुआ है, तो सूर्य की मनमानी चलने दो, मैं ठीक इसके बाद चंद्र वंश में अवतार लूंगा। इसने एक महीने का दिन बनाया, तुम 6 महीने की रात बना लेना। तो चंद्रमा खुश हो गया कि भगवान मेरे वंश में प्रकट हुए, और भगवान बाल लीला करते हैं। नामकरण संस्कार की कथा है, वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं चारों का। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अतुल लोक दायक विश्रामा। भरत जी का नामकरण किया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शत्रुघ्न जी का नामकरण किया, जाके बल ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न नाम प्रकाशा। लक्ष्मण जी का किया, लक्ष्मण राम नाम धन, विश्व सकल आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। शिष्यनाथ जी हैं लक्ष्मण, तो चारों का नामकरण किया, भगवान बाल लीला करते हैं। जैसे हमारे बच्चे खिलौना मांगते हैं, भगवान भी खिलौना मांगते हैं। ठीक है, खिलौने में क्या मांगते हैं? सूर्य और चंद्र को खिलौने में मांगते हैं। कबहू शशि मांगत आदि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी करें। महाराज दशरथ से कहते हैं, ये जो पूर्णिमा का चांद आकाश में लगा है, मेरे खेलने के लिए ला दीजिए। और कभी कभी उसी चंद्रमा के प्रतिबिंब को अपने तालाब में देख करके, सरोवर में देख करके भगवान डरने की लीला करते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, हंसते हैं, कभी खेलते हैं, कभी रोते हैं, कभी दौड़ते हैं। ठुमक ठुमक राम चंद्र बाजत पैजनिया। हारमोनियम बजाओगे? मैं एक चौपाई गा देता हूं। नहीं, और विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को लेके जाते हैं। तारिका को मारा, सुबाहु को मारा, लेकिन मारिच को नहीं मारा भगवान। बिना फर का बाण मारा, 100 योजन दूर लंका में फेंक दिया, क्योंकि इसी मारिच से लीला करवानी थी भगवान को। बात इससे काम था ना, इसको मारा नहीं। और ये इतना डर गया, जब इधर से कूद के उधर तड़क से गिरा नीचे, तो बहुत डर गया। और डर के मारे राम नाम जपने लगा। इतना भगवान से डर गया कि राम 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 जपता है। और जब विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में भगवान जाते हैं, उनके लिए निमंत्रण आया था, तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ये शिला बन के बैठी है पत्थर, आप इससे अपना चरण लगा दीजिए। भगवान ने कहा, हम रघुवंशी लोग कभी किसी स्त्री पर पांव नहीं लगाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, कैसे कल्याण होगा? आपके चरण लगने से ही इसका कल्याण होगा, क्योंकि इसके पति गौतम ऋषि इसको श्राप देके गए। भगवान ने कहा, मैं पांव तो नहीं लगाऊंगा। और इतने में एक लीला रची भगवान ने। रघुवंश में महाराज दलीप नाम के एक राजा हुए हैं, उन्होंने एक बार पवन सुत की उस वाय की तपस्या की, तो वाय ने आकर के उनको वरदान दिया। महाराज दलीप ने वरदान मांगा उनसे कि हे वायु, हे पवन, मैं आपसे वरदान चाहता हूं, किस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर अगर कोई स्त्री, विशेषकर कोई असहाय स्त्री, लाचार स्त्री, जिसके पास वस्त्र न हो, रहने के लिए घर न हो, उसका कोई आगे पीछे न हो, वो थकी मादी हो और किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हो, तो उस समय, क्योंकि उसके तन में एक ही कपड़ा है, तो उस समय उस स्त्री के शरीर की लाज आप रखना। महाराज दिलीप ने कहा, आप ऐसी हवा चलाना कि उसके तन से, उसके तन और बदन से कपड़ा ऊपर नहीं उठना चाहिए, उसकी नग्न अवस्था कभी मत करना। तो वायु ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा, ये वरदान महाराज दिलीप को दिया। तो उस समय पवन सेवा में आ गए और वायु ने ऐसी हवा चलाई कि भगवान के चरणों की धूल से हवा गई और धूल उड़ करके उस पत्थर के ऊपर चली गई और पत्थर से तुरंत अहिल्या प्रकट हो। भगवान ने चरण नहीं लगाया और प्रार्थना करने लगी, भगवान की स्तुति करने लगी। ये ब्रह्मा की बेटी है अहिल्या। ब्रह्मा जी ने एक बार शर्त रखी, बहुत सुंदर थी अहिल्या। हमारे शास्त्रों में आप पढ़िए, विशेषकर मार्कंडी पुराण में, अहिल्या, सती, सावित्री, मदालसा, अनुसुईया, अत्रिमुनि की पत्नी, इतनी सुंदर, ये लोग दिन में नहीं दिखाई देते थे। और देवता लोग तरसते थे इनको पाने के लिए, देखने के लिए। लेकिन इनकी शादी किनसे हुई है? जो तपोनिधि हैं, भगवत भक्त हैं। और वो भगवत भक्त कैसे हैं? दिन भर भजन करते हैं, पत्नियां उनकी सेवा करते हैं। अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी हैं, ब्रह्मा जी ने शर्त रखी, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो शादी से पहले एक साल मेरी बेटी को अपने घर में रखेगा, और एक साल बाद लड़की मेरे घर आएगी और मेरे को पूरी खबर देगी पूरे साल भर की। अगर थोड़ा भी अधर्म या कोई इस तरह का कार्य वो व्यक्ति करेगा जो उसको ले जाएगा, तो दंड का भागी होगा और शादी भी नहीं होगी। और अहिल्या इतनी सुंदर, तो कोई भी देवता लोग भी ले जाने को तैयार नहीं। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा मैं अहिल्या को लेके जाऊं। एक साल तक अपने आश्रम में रखा, मुनि तो ध्यान करते थे भजन करते, उनको कोई मतलब नहीं। और अहिल्या आश्रम में रहती थी। एक साल बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से पूछा गौतम ऋषि कैसे हैं? अहिल्या ने कहा बहुत अच्छे भक्त हैं, इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, कभी भी अधर्म कोई ऐसी बुरी नजर से मेरे को नहीं देखा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से की, और जब शादी हो गई तो इंद्र बहुत चिढ़ने लगा कि हम देवता लोग के पास सुंदर कन्या होनी चाहिए औरत, जबकि उनके पास पहले से सुंदर कन्याएं हैं, उर्वशी रंभा मेनका सब सुंदर अप्सराएं हैं नहीं, लेकिन और होना चाहिए। इसलिए एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि गौतम ऋषि ब्रह्मा की बेटी हमको तो मिली नहीं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि उसका हरण करके ले आए। देवता लोग बहुत खुरापाती होते हैं, सुर नर मुनि सबकी और रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, इसलिए देवताओं की पूजा करना मना है। कामस्ते ते हित ज्ञाना प्रपदंते न देवता तंग तंग नियम वास्ताय प्रकृत्या नियता सोया। इसलिए चंद्रमा ने कहा क्या करना पड़ेगा, इंद्र बोला मेरे साथ चलो। और ये ठीक आधी रात में गौतम ऋषि के आसपास उधर छुप गए कहीं जा। ब्रह्म मुहूर्त तो शुरू होता है सुबह 3:30-4 बजे, तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ और ठीक 2 बजे जाके गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मुर्गा बोलता है, घड़ी भी खराब हो सकती है अपनी। पहले उसने 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, घड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये मुर्गे का बोलना कभी आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि इसको वरदान है ऐसा कि ठीक ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगे। तो लेकिन ये कपटी मुर्गा है चंद्रमा, ये जाकर के 2 बजे को करने लगा। गौतम ऋषि ने विचार किया मैं रोज मुर्गे के बोलने से पहले उठ जाता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज मुर्गा मेरे उठने से पहले कैसे बोल गया, फिर भी मुझे बहुत देर हो गई। तुरंत कम्बल उठाया, कमंडल, और स्नान के लिए दौड़े दौड़े गए। और इतने में इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और अहिल्या के कक्ष में चला गया। अहिल्या ने कहा आप तो स्नान करने गए थे, अभी 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 कैसे आ गए, पहचान नहीं पाई। इस नकली गौतम ऋषि ने कहा पता नहीं आज मुर्गा कैसे बोल गया, लगता किसी गांव वाले का मुर्गा इधर आ गया। तो आज ऐसा करते हैं आप और हम स्वर्ग चलते हैं, तो सुबह का स्नान ध्यान उधर ही करेंगे स्वर्ग था इंद्र। तो अहिल्या को बहका रहा था, उसी घड़ी में गौतम ऋषि जब स्नान करने गए तो वहां काला नाग निकल गया, क्योंकि नदी में विशेषकर तीर्थों के जल में अगर आप बेसमय पर स्नान करेंगे कुछ ना कुछ घटना घट जाती है, या तो नाग निकलेगा या आदमी डूब जाएगा। नंद बाबा गए थे एकादशी के दिन, क्या हुआ, वरुण के दूध पकड़ के ले गए, दशम स्कंद में कथा आती है ना। तो काला नाग निकला और तुरंत समझ गया आज कुछ दाल में काला है, ये मुर्गा भी पहले बोल गया और इधर नाक भी निकल गया। तो तुरंत अपनी कुटिया की तरफ आ रहे थे तो इतने में इंद्र गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से बात कर रहा था। जैसे ही मुनि को आते हुए देखा तो अपने असली रूप में बिल्ली बन रूप को छुपा के बिल्ली बन के भागने लगा। और गौतम ऋषि का कुटिया के गेट से अंदर को आना, इस बिल्ली को देखना, वो तपस्वी है समझ गए नकली बिल्ली है। गौतम ऋषि ने बिल्ली से कहा असली रूप में प्रकट हो नहीं तो मैं अभी जल छिड़क के तुम भस्म कर लूंगा। तो डर के मारे अपने असली रूप में आ गया, चंद्रमा भी पकड़ा गया जो मुर्गा बना था। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि शरीर के एक अंग के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक रचा, इसमें श्राप देता हूं तुम्हारे पूरे शरीर में इसी तरह की गुहा द्वार हो जाए। चंद्रमा को श्राप दिया तुम कोड़ी हो जाना, इसे पूर्ण चंद्रमा का कभी अब पूर्णिमा का चांद देखना उसके काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये गौतम ऋषि का श्राप है, कोड़ है उसको। लेकिन साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये पत्थर है पहाड़, रूपा जी लिखते हैं किताब का। साइंटिस्ट लोग कहते हैं हम चंद्रमा पर पहुंच गए, क्या लेके आए, काले पत्थर। 50-60 साल तक रिसर्च किया, खरबों डॉलर खर्चा किया, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी बीएससी एमएससी करने में, साइंटिस्ट बनने में। अब कोई कहे मेरा लड़का नासा में काम करता है, क्या काम करता है, यही चंद्रमा, इधर तारे में जाना है, इधर रूपा जी भी लिखते हैं, कई दूसरे आचार्य ने भी टिप्पणियां की हैं। इस लोक को छोड़ करके, भूलोक को छोड़ करके जहां भजन करने की जगह है, फालतू फालतू लोगों में घूमने की कोई जरूरत है। चंद्रमा पर गए, खरबों डॉलर खर्चा किया, इतने साल हमारे बर्बाद हो गए, कितने हजार लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, और वहां से क्या लेके आए, दो पत्थर। पत्थर सर पर मारना है क्या? और चंद्रमा पर वैज्ञानिक पहुंच गए, क्या प्रोग्रेस हुआ, दो पत्थर से प्रोग्रेस हो जाता है। अभी एक गुजराती लड़की गई थी एक गुब्बारे में बैठ के, एक तो पहले गई थी मर गई, कल्पना चावला का नाम आता है, फिर एक दूसरी गई तो उसने क्या कहा, हम 6 महीने ऊपर रहे, इधर से ही हवा ले गए थे, उधर हवा तो मिलती नहीं, इधर से ही पानी ले गए सांस लेने के लिए हवा भी, ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत है जहां हवा भी नहीं मिलती, जहां हवा है उधर रहो ना, उधर रह के भजन कर। इसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये लोग इतने साल रिसर्च करते हैं, खरबों डॉलर खर्चा करते हैं, अगर इतने साल भजन करें और ये इतना पैसा कृष्ण भावना भावित में लगाएं तो चंद्रमा पे क्या हम भगवान के धाम पे तो जा सकते। सदुपयोग और दुरुपयोग अपने हाथ में है, लेकिन दुरुपयोग होता है, ये सब दुरुपयोग है। इसे चंद्रमा को कोड़ कहा गौतम ऋषि ने, और फिर पकड़ा अपनी पत्नी अहिल्या को। अहिल्या बहुत डर गई, बोली मेरा कोई अपराध नहीं, मैं पहचान ही नहीं उसको, आपका वेश बना के आ गया था, गौतम ऋषि ने कहा मेरा वेश बना के आ गया था, लेकिन आप तो हमारी पत्नी हो ना, तो तुम उसके रूप पर क्यों गई, तुमने उसका स्वभाव नहीं जाना। एक ही सवाल पूछा, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप नहीं दिया, जैसे कई कथाओं में कहते हैं ना श्राप दिया पत्थर हो जाए, लेकिन रामायण में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है श्राप नहीं दिया। वो बहुत डर गए, कांपने लगी ब्रह्मा की बेटी। मुनि ने एक ही सवाल किया उससे, क्या तुम अपने पति के स्वभाव को नहीं जानती, बहुत बोल रही थी, रूप बना के आ गया, मेरे को बात करने लगा, इधर उधर बहकाने लगा, मैं क्या करती। ऋषि ने एक ही बात पूछा उसको, मैं तुमसे एक ही बात पूछता हूं, क्या तुम अपने पति के स्वभाव को नहीं जानती, बस इसका उत्तर दो। और जवाब नहीं दे पाई इसलिए पत्थरवत हो गई, पाषाण। गौतम ऋषि ने कहा हर किसी का रूप एक हो सकता है, 10 हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होगा। एक बाप का बेटा है, शकल वही, नाक नक्शा सब वही, लेकिन उसका दोनों बाप बेटे का साइन लो, उसका राइटिंग अलग होगा, उसका अलग होगा। एक परिवार में एक बाप के 4 बच्चे, चारों के साइन लीजिए, शक्ल बाप जैसी है लेकिन सैंग बाप जैसा नहीं होगा। इधर ही सैंग करके देख लो ना। इससे साबित होता है हमारी सिग्नेचर राइटिंग अलग होने का मतलब है हमारा स्वभाव अलग है। स्वभाव अलग होने का मतलब है स्वभाव के अनुसार कर्म भी अलग है और कर्म के हिसाब से गति भी अलग होगी। इससे गौतम ऋषि ने साबित किया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला है अपने स्वभाव के साथ। और पत्थरवत हो गई, आज भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। और जनकपुरी में धनुष यज्ञ है, महाराज जनक ने धनुष यज्ञ रखा है कि जो हमारे शिव धनुष को तोड़ेगा वो लड़की का शादी हम उससे कर देगा, ऐसा प्रतिज्ञा। सीता जी छोटी थी, उन्होंने कभी बचपन में शिव धनुष उठा दिया ऐसे खेल खेल में, तो महाराज ने प्रतिज्ञा की हमारी बेटी ने उठा दिया तो इससे शादी उसी की होगी जो उसको तोड़ेगा। सत्र पहले के राजा लोग शर्त रखते थे, पहले के लोग शर्त रखते थे उस पर कायम रहते थे। अगर हम आज के होते धनुष अब कोई तोड़ने वाला नहीं, चलो ईंट तोड़ने वाले से कर देते। आजकल पलटी मारते नहीं मारते। एक देखो, मैं अपनी बेटी की शादी फलाने लड़के से करूंगा, लड़की की शादी ऐसी लड़की से करूंगा, बहुत ढूंढा छह महीने मिली नहीं, चलो इसी से कर दो। मन लग गया गधी पे तो परी क्या चीज है, जो मिल गया उस कायम रहो ना, चाहे कुंवारी रहे वैसा ही लड़का जैसा बोला वैसे दो। एक एक मिनट में पलट की मार। ये कथाओं से ये भी ये सब हमारे व्यवहारिक जीवन की चीज है। लड़कियां ही हैं हमारे कृष्ण कॉन्शियस, मैं भक्त से ही शादी करूंगी, नहीं मिला दो चार साल, चलो अब दारू पीने वाले से मेरी ताकत होगी तो भक्त बना दूंगी उसके बाद में। भक्त कब बनाओगी, तुम खुद ही अपने कायम नहीं है उसको क्या भक्त बनाओ। एक प्रण होना चाहिए, मेरे भक्त मिलेगा तभी शादी करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। है कोई दो चार साल खूब ढूंढने का, अरे अब कोई नहीं मिलता, चलो किसी भी गले में बांध दो। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ शादी करेगा। तो सब देश विदेश के राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया है, एक महीने का संबत, एक दिन का नहीं, और एक एक मेहमान के लिए एक एक महल, ऐसा रामायण में वर्णन है। चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। सारे पिलर महल के जो बाहर के पिलर हैं सब हीरे जवाहरात जड़े, तो मार्बल और टाइल्स का कोई काम नहीं होगा। सोने की टाइल्स और सोने की टाइल्स पर हीरे जवाहरात बाहर से जड़े हुए, ऐसे एक एक महल में एक एक मेहमान को ठहरा रखा है। एक महीने का स्वयंवर है और सब पूरी दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया है। तो इसमें वर्णन है कि स्वयंवर में भी नौ भाव के लोग आए, क्योंकि भगवान का जन्म नवमी के दिन हुआ है। राम जी का जन्म कब हुआ, नवमी के दिन, आज नवमी है। तो भगवान के जन्म की जो तिथि है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान जिन तिथियों में जन्म लेते हैं वो तिथियां दूसरी तिथियों से मेल नहीं खाती, विशेष तिथियां होती, ये बताना मैं भूल गया। आप सारे अंक लीजिए लेकिन नौ का अंक विशेष है। इस अंक की विशेषता क्या है, इस अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उस अंक को आप आपस में जोड़ेंगे उसका योग भी नौ होता है। आपको ये बात मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, खुद हमने ही सुनाया था आपको, क्या मालूम है? हम तीन चार बार कथा में सुना चुके हैं यार, ज्ञान प्रकाश जी ने हमसे सुनाया ना, तो जिनने नहीं सुना सुन लो। नौ का पहाड़ा पढ़ो, नौ एकम नौ दुनी 18 में दो अंक एक और आठ आपस में जोड़ो, नौ तिया दो और सात, नौ चुको तीन और छ, नौ पंचे 45 चार और पांच नौ, आगे 54 पांच और चार नौ, 63 छह और तीन नौ, आगे 72 सात और दो नौ, नौ नौ इक्यासी आठ और एक नौ, नौ दाम नब्बे नौ। अच्छा नौ के पहाड़े में दूसरे पहाड़े पर आप जाइए, नौ दुनिया अठारह में एक पहले है आठ बाद में, नौ नौ में इक्यासी में आठ पहले एक बाद में, लेकिन योग नौ होता है। इसका मतलब क्या है? भगवान रामचंद्र जी की जो लीलाओं को सुनता है पढ़ता है, उनके जन्म की कथा जो सुनता है, रामनवमी का जो उपवास रखता है भगवान के लिए उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में कितनी ही विषम परिस्थिति हो, चाहे एक आगे हो आठ पीछे या आठ आगे हो एक पीछे, तो कथा सुनने के बाद, अभी 10 बजे कथा खत्म हो जाएगी ना, 11 बजे सब सम हो जाए, अजमा के देख लेना, अजमा के मतलब ये थोड़ी कि किसी का 1 लाख रुपए देना नहीं मांगेगा, ऐसा कथा का मतलब नहीं है। मन किधर गया है? इधर उधर, चंचल वृत्ति इधर उधर भटक रहा है, तो 10:30-11 बजे तक या अभिषेक के बाद ठीक ठाक हो जाएगा, अगर ध्यान से कथा सुनो। हमारा तो ठीक नहीं होगा कहने वाले का, आपका ठीक जरूर होगा। तो विषम परिस्थितियां भी सम हो जाती हैं अगर भगवान के जन्म की कथा को हम सुने। कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, आठ का अंक भी विशेष है। आप आठ का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसके अंकों को आप आपस में जोड़ेंगे तो जितने का वो पहाड़ा है एक एक अंक कम होता जाता है। ये कथा कितनों को मालूम है? ज्ञान प्रकाश जी को छोड़ करके कितनों को मालूम है? आठ का पहाड़ा पढ़िए, आठ एकम आठ दुनी 16 में एक और 6 है आपस में जोड़िए तो आठ का पहाड़ा है। तो दूसरी में एक कम हुआ ना साहब, आठ ध्यान 24, 2 और 4 6 फिर एक कम हुआ, 8 को 32 3 और 2 5 फिर एक कम हुआ, 8 पंचे 40 फिर एक कम हुआ 4, 8 का 48 4 और 8 12 12 को आपस में जोड़िए 1 और 2 3 फिर एक कम हुआ, और 48 के बाद 56, 5 और 6 11 11 को आपस में जोड़िए 1 और 1 2 फिर एक कम हुआ, आगे बढ़िए 64, 6 और 4 10 10 को आपस में जोड़िए, तो आठ का पहाड़ आप आठवें दिन तक पढ़ेंगे, आठवें तक तो एक एक कम होता जाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की कथा अगर आप पहले दिन से लेकर आठवें दिन तक लगातार सुनेंगे पूर्णाहुति के दिन तक, तो हमारे जितने भी आठ दोष हैं एक एक दिन की कथा में कम होते जाते हैं और पूर्णाहुति के दिन हम मुक्त हो जाते। तो काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर इच्छा ये होगी, दो और लगा लो, दोष तो बहुत है ना, तो दो और जोड़ो तो आठ दोष कथा तक कम हो जाते एक कथा में। डेली ध्यान से कथा सुनेंगे, पूर्णाहुति में अच्छी तरह से आहुति देंगे, हरि नाम की आहुति 108 बार, तो दोष मुक्त जीव हो जाता है, भगवान की कृपा उसको मिलती है, ऐसा कहा गया। तो आज का अंक भी विशेष है। तो सीता स्वयंवर में भी 9 भाव के लोग आए हैं, क्योंकि नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ है। ये कौन कौन लोग हैं? इनमें भक्त भी हैं, योगी लोग भी हैं, संत भी हैं, वात्सल्य भाव वाले भी हैं, नंद बाबा यशोदा जैसे, जनक महाराज और सुनैना। तो जब भगवान ने विश्वामित्र जी के साथ सभा उस विवाह मंडप में प्रवेश किया तो वहां भरे हुए समाज ने विभिन्न रूपों में भगवान को देखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनों तैसी। अब इस स्वयंवर में जो देश विदेश के राजा लोग आए हैं मेहमान, इनमें सब लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। एक महीने का स्वयंवर है, एक एक महल एक मेहमान को है, खाने पीने की व्यवस्था 24 घंटे है। तो कुछ राजा लोग सोचे चलो सीता नहीं मिलेगी, कम से कम सेहत तो बना लेंगे खाते। एक महीना किसी को ठीक ढंग से सुबह का नाश्ता मिले, दोपहर को शाही पनीर मटर पनीर मिले, शाम को फिर ठीक ठाक मसाला डोसा वगैरह, फिर रात को फिर पालक पनीर, और सुबह गर्म पानी से नहाना, कसरत थोड़ा वॉक, एक महीने में तो अच्छी खासी सेहत हो जाती है। तो कई लोग गरीब भी हैं राजा लोग, सोचे चलो एक महीना जाके सेहत ही बना लेंगे, धनुष टूटेगा नहीं टूट, जो तोड़ेगा उसको देख लेंगे। इसका मतलब क्या? सीता जी कौन है? भक्ति है। और राजा लोग कौन है? हम सब लोग राजा लोग, जितने लोग भगवान का भजन कर रहे हैं सब भजन करने थोड़ी आए हैं, कुछ लोग खाली खाने पीने के लिए सेहत बना लेंगे, क्योंकि मंदिर में खाना अच्छा मिलता है, टाइम से मिल जाता है। सुबह 4 बजे तो वैसे नहीं उठ सकते, ऐसे ही उठ जाएंगे, सुबह वॉकिंग करने को भी हो जाएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु यतति कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मावेति तत्त्वतः, गीता में भी कही है बात। कितने करोड़ों लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, आधे तो चूना लगा रहे। जटिलो मुंडी लुच्छित केशव काशायांबर बहुकृत वेश पश्चन पीत न पश्च भी मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेश। मंड मुड़ाए तीन गुण सिट की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें अलग महाराज। सिर तो मुड़ाना है 2 रुपए के ब्लेड से, इसी का रख लेंगे बस महाराज। क्या ठाट बाट, हम अभी सिलवासा में कथा कर रहा था, हमको इतना फैसिलिटी कोई मनुष्य को नहीं देता। सब अपना चरण हमारे यहां रख दीजिए, नहीं भी गया 25 इंडस्ट्री में मैं गया था, खाली चरण रख दीजिए, मुझे मालूम है मेरा चरण क्या है। लोग, मैंने उनसे ये भी कहा, आप हमको यहां मर ले जाइए, क्योंकि हम हमारे को देख के लोग दरवाजा नहीं खोलते, अपने घर में नहीं आने देते, तो तुम फैक्ट्री में क्यों ले जा रहे हो। बोले नहीं नहीं आप महाराज चरण रख, जबरदस्ती अपनी चेयर में बैठा। कभी पूछे 25 फैक्ट्री में हम गए, क्या व्यवस्था, बस 3 घंटा पकपक करना, कोई भक्ति नहीं, हम अपना हिसाब बता रहे हैं आपको, सब दिखावा। इसके लिए राम नाम जपना पराया माल अपना, अपने पर लेना चाहिए पहले। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, इतना मान सम्मान भारत। तो इस सीता स्वयंवर में भी ये कुछ राजा लोग सिर्फ शेर बनाने के लिए, कुछ लोग आए हैं, हम धनुष तोड़ने का प्रयास करेंगे, ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे हम, अगर टूट गया ठीक है, नहीं टूटेगा कोई बात, तो कोई टेंशन भी नहीं, प्रयास कर। यह तथि कश्चित सिद्ध है। और कुछ लोग आए हैं सीधे साधे कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसका दर्शन कर लेंगे, सीता का दर्शन कर लेंगे। और कुछ लोग बड़े खतरनाक भी आए हैं, ये लोग क्या हैं कि धनुष तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे, नहीं तो जो धनुष तोड़ेगा उसका पांव हम तोड़ देंगे। ये शराबी लोग आते नहीं शादियों में, हुड़दंग शादी में भी देखा होगा आपने, इनका ग्रुप है बहुत बड़ा, हम ही तोड़ेंगे, चाहे हम 10 आदमी मिलकर तोड़ें, 50 मिलके तोड़े, हम ही तोड़ेंगे। अगर किसी दूसरे ने तोड़ा सीता को ले गया तो उसकी खैर नहीं, और हुड़दंग कर दें। तो ये खतरनाक लोग वहां बैठे हुए हैं, सब आसन जमा करके, और जब भगवान ने विवाह मंडप में प्रवेश किया तो इन सब लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार प्रभु का अलग अलग दर्शन किया। तो जो खतरनाक लोग आए थे इन्होंने भी दर्शन किया, जो काम बिगाड़ने के लिए आए थे, तो भगवान ने इनको दर्शन दिया नरसिंह रूप में। अगर महाराज जनक की बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ की, होटंग किया, जो 1 महीने से पालक पनीर शाही पनीर खाया ना, सब बाहर निकाल दूंगा, नाखून दिखा दिए। तो नरसिंह रूप में, और हिरण्यकश्यप को भी दिखा दिया, देखो हिरण्यकश्यप को मैंने पेट फाड़ दिया। तो ये राजा लोग सब डर गए, बोले जब हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा हमको क्या छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहो, स्वयंवर देखो बस, और सब चुपचाप बैठ गए अपनी जान बचाने के लिए। और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। फिर बोलो सीता सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब अगली बारी 1-2 माइक और लगाना आदियोगी बबू, 1-2 माइक और लगा, हम ऑर्गन तबला हमारे पास 4-5 टीम है, ले आएंगे हम, तो आपको अच्छा सुना देंगे। हम अच्छी कथा करते हैं, अपने मन से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। आप लोग तो कभी बोलोगे नहीं, इससे मैं ही बोल देता हूँ, मैं बहुत अच्छी कथा कर। तो एक आध माइक हमको और दे देना। और चारों भाइयों की शादी हो गई। जनक महाराज की छोटी बेटी थी और उनके भाई की दो बेटियां थी। चारों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हुई। बारात आई, विदा हो गई और दशरथ महाराज ने विचार किया मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक कर दूं, उसको राजा बना दूं। तो देवताओं को ये बात पता लगी। देवता लोग सब सरस्वती के पास गए कि अगर भगवान राजा हो जाएंगे तो हमारे संकट को दूर कौन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा संकट क्या है, रावण। रावण कितना बड़ा संकट है, सारे देवता लोग झाड़ू लगाते हैं उसके यहां। जो पवन है ये झाड़ू लगाता है, जो अग्निदेव है ये कुकिंग करता है, पराठे बनाता है। सारे देवताओं को ड्यूटी सौंप रखी है, तेरा काम सफाई करना, तेरा काम चूना लगाना, तेरा काम करल लगाना। सारे 33 करोड़ देवी देवता इसके लंका में सेवा करता है। रावण बहुत प्रकांड विद्वान और बहुत खतरनाक आदमी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, गुरु वशिष्ठ को भी झाड़ देता हो। कभी कभी सभा में गुरु वशिष्ठ ने कहा सुझाव देते कुछ, तब बोलता ए मूड मते, चुप रहो, तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, किसी की एडवाइस की जरूरत। कितना खतरनाक है। तो सब देवता लोग डर गए, भगवान राजा हो जाएंगे तो रावण से कैसे हमारा कल्याण हो। तो सरस्वती से कहा हमारा काम कर दीजिए। सरस्वती ने कहा मैं ठीक आपका काम कर दूंगी। और सरस्वती जाकर के मंथरा की नौकरानी, वो केकई की नौकरानी मंथरा की जिह्वा पे जाके बैठ गई और ये अपनी चमचागिरी करने लगी। मालकिन की नौकरों की आदत होती है ना चमचागिरी की, साफ साफ बिना बात साफ। आधे लोग तो सिर्फ चमचागिरी का पैसा लेते हैं और जो काम करने वाला आदमी है उसकी तनख्वाह कम, चमचागिरी की 10 गुना ज्यादा। लेकिन इनकी जिंदगी भर तो बड़ी मौज रहती है, लेकिन मरते वक्त हालत खराब रहती है। चाणक्य नीति में लिखा है जो आदमी चमचागिरी करके मौत करता है इसकी मौत कैसे होती है। एक सांप को आप लीजिए और उसको लोहे की रॉड के अंदर होल में पाइप होता है ना, तो उसी की मोटाई के बराबर उस रॉड के अंदर डाल दो तो सांप तड़प तड़प के मरता है। तो ऐसे जो लोग चापलूसी चमचागिरी करके इधर का उधर करके, हमारे भक्तों में भी बहुत चमचागिरी होती है, अथॉरिटी का चमचागिरी करना, और अथॉरिटी को भी वही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा भक्त। तो ये देखो चमचा चाहे भक्त है या कटोरा है, चमचा चमचा है, ऐसी हालत खराब होएगी मरते वक्त, दम घुट जाएगा, 6 महीने रहोगे कोमा में, इधर ही आईसीयू में मरना पड़ेगा भक्ति वेदांता हॉस्पिटल। इसलिए चमचागिरी किसका करना है, भगवान का चमचागिरी करना है, गुरु का चमचागिरी करना है, महापुरुष का चमचागिरी करना, 2 पैसे के लिए पोस्ट के लिए चमचागिरी नहीं करना है। राम कथा है, आ गया है प्रसंग, बोल दो। हम बड़े बड़े महापुरुषों में भी हमने भाव देखा है। एक बार क्या है इंडिया टीवी चैनल है ना, तो उस पर एक महापुरुष ये मुरारी बापू जी ये राम कथा करते हैं, तो इनका इंटरव्यू हो रहा था। तो वो संवाददाता ने इनको पूछा आप जो काला चश्मा पहनते हो क्या आप फिल्मी हीरो की नकल करते हो। तो मुरारी बापू बोला कि जो फिल्मी हीरो है उसकी से तो ज्यादा मेरी उम्र है, मेरी उम्र ज्यादा है, वो लोग जवान हैं, तो मैं उनकी नकल करूंगा या वो मेरी नकल करेंगे। उन्हें हंसी मजाक में विनोद चल रहा था, बोले तो उन्होंने कहा मैं किसी का नकल नहीं करता। तो बाद में उन्होंने हकीकत बताया कि मैं काला चश्मा क्यों पहनता हूं, क्यों। उन्होंने कहा मेरे डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया है। तो उन्होंने बताया कि बचपन में हम लोग बहुत गरीब थे,
हमारे घर में खाने को नहीं था, प्रोटीन युक्त कुछ खाना नहीं, माँ रूखा सोगा बना के देती थी, तो बचपन में जब शरीर को प्रोटीन मिलना चाहिए था तब मिला नहीं। आज राम की कृपा से पूरे लाखों लोग मेरे सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप खाने की ताकत नहीं, क्योंकि शरीर बनाने की भी उम्र होती है ना। अब कोई बोले मैं 75 साल में काजू किशमिश और घी पियूंगा और दादा सिंह को घोषाबाजी करेगा, होगा काम? ये खाने पीने का उम्र होता है बचपन से। तुमने बताया हमारी नजर कम हो गया क्योंकि हमको बचपन में ठीक टाइम पर अच्छा आहार नहीं मिला, तो डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया कि आप ऐसा चश्मा पहनिए जो धूप छाया का भी हो और नजर का भी हो। तो अगर वो चश्मा पहनेंगे तो आपकी जो नजर अभी तक है बरकरार रहेगी, कम नहीं होगी, बताया। फिर उनको पूछा आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? उन्होंने कहा जो व्यक्ति जो जीव भगवान राम के शरणागत है इससे बड़ी पोस्ट कोई हो सकती है? भगवान की शरणागति को छोड़ के, उनकी सेवा को छोड़ करके मैं प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता? मैं राम जी के चरण छोड़ के कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे संतों के भाव। तो कभी भी देखिए बात कहने में कड़वी लगती है लेकिन इसका फल है। हम सत्ता, भगवान की सत्ता को तो नहीं बदल सकते ना। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, चार आदमी से मेरी पहचान हो गई, इधर उधर करके काम कर लिया, कब तक चलेगा ये? जैसे एक दिन बुराई छुप नहीं सकती, हम बुरे कर्म करते हैं, एक न एक दिन पोल खुलेगी हमारी, तो क्यों ना हम ऐसा प्रण लें कि हम अच्छे काम करें, ऐसे काम अच्छे काम करें, एक न एक दिन तो अच्छे काम की भी पोल खुलेगी ना। जैसे बुरे कर्मों की पोल खुलेगी वैसे अच्छे कर्मों की भी खुलेगी, तो क्यों ना अच्छे कर्म का दायित्व, अच्छे विचारों का दायित्व ले। इस सरस्वती केकई की जीवा पर जाके बैठ गई, चमचागिरी करने लगी। मालकिन आपके लड़के की कोई इज्जत नहीं, कितना प्यारा भरत है, उसकी मां को मालूम नहीं है कितना प्यारा है, इसको मालूम हो जाता है। और चक्कर मांगी क्योंकि देवताओं का चक्कर है। और केकई ने राजा से कहा मुझे दो वरदान चाहिए, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। प्रभु ऐसा चाहते थे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि राम जी ने केकई से कहा था मैं वनवास जाना चाहता हूं, क्योंकि केकई भगवान को बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक कक्ष में बैठ करके भगवान ने केकई से कहा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, लेकिन शर्त इस बात की है मैं तुमसे जो मांगू तुम कभी भी किसी को बात बताएगी नहीं। केकई ने कहा मैं कभी नहीं बताऊंगी, किसी युग में नहीं, किसी कल्प में नहीं, किसी जन्म में नहीं बताऊंगी, एक जन्म में। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बहुत प्यार कर। तो भगवान ने कहा जो चीज हम तुमसे मांगेंगे वो इतनी भयंकर है कि आपकी बदनामी भी होगी बहुत, सब लोग आपको बदनाम करेंगे, युगो युगो तो आप बदनाम रहेंगे कि आपने इतना गलत काम किया। तो कहा मैं तेरे लिए बदनामी भी सह लूंगी, क्योंकि जिससे प्यार है उसके लिए बदनामी सही जा सकती है। तो कहा मैं युग युग क्या कल्प कल्प तक बदनामी सहूंगी। तो इसी बात प्रभु ने कहा अगर वो वस्तु आप हमको दे देंगी तो आप विधवा भी हो सकती हैं, महाराज का देहांत तो हो सकता है। तो कुछ देर रुक के बोली मुझे विधवा होना पसंद है लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग। तब भगवान ने कहा तुम महाराज से कह करके मुझे वनवास भेजवा दो ना, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि केकई ये काम कर सकती है, क्योंकि केकई को भगवान दशरथ जी का दो वरदान बाकी है पेंडिंग। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से संग्राम कर रहे थे युद्ध, तो युद्ध करते करते उनके रथ का पहिए की कील निकल गई, बहुत स्पीड से रथ चल रहा था तो कील निकल गई और चक्का बाहर को निकलने वाला था, और इतने में देखा कि मेरा चक्का निकल जाएगा तो रथ नीचे गिर जाएगा और दैत्य लोग इन पर टूट पड़ेंगे, तो केकई भी संग्राम में गई है, जब इसने देखा कि मेरे पति के रथ का चक्का नीचे गिर जाएगा तो इनकी हार हो जाएगी, तो केकई तुरंत रथ से कूद गई और चक्के में जो कीली की जगह है वहां अपनी उंगली डाल दी उसने। तो इसने जब उंगली डाली तो पहिया चलता रहा और महाराज दस युद्ध करते रहे और देवासुर संग्राम में विजयी हो गए। कहा, आज तुमने मेरी लाज रखी, तुम कोई भी दो वरदान मुझसे मांग सकती हो। केकई ने कहा, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, पेंडिंग रहे जमा, फिर कभी जरूरत पड़ेगी दे। अगर हमारे जैसा पति होता बोलता, मेरे को याद नहीं है तुमने कब क्या बोला, उससे मेरा दिमाग गर्म होगा, मैंने बोल दिया होगा, तो दोपहर में 12 बजे क्या बोले, 2 बजे मुकर जाता। लेकिन ये रघुवंशी लोग हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसे महाराज दशरथ ने कहा, हाँ हाँ बोला तो था, तो वचन पर कायम है, इसलिए कहा भरत को राजगद्दी। तो भगवान को वनवास हो गया, किवट से नाव मांगी, नाव पार किया, चित्रकूट में भगवान कथा सुनाते हैं। कितने लोग चित्रकूट गए हैं आप? चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है, जैसे गिरिराज गोवर्धन जी हैं वृंदावन, तो भगवान कामतगिरी पर्वत पर लीला करते थे। तो भगवान दिन में कथा सुनाते हैं और सब ऋषि मुनि लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, सब बड़े बड़े तपस्वी लोग जो हजारों लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कथा में लेट आते हैं। भगवान ने सब ऋषि मुनियों से कहा, आप लोग कथा में थोड़ा टाइम से आया करो। तो ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है कल से टाइम से आए। दूसरे दिन फिर लेट हो गई, तो भगवान ने कहा, तुम लोग आज भी लेट आए, आप कथा में टाइम से आया करिए, टाइम से आओगे तो मैं टाइम से कथा पूरी कर दूंगा। तो तीसरे दिन सब ऋषि मुनियों ने बैठक बुलाई, कैसे टाइम से आओ कथा में, हमको सब खुद करना है, झाड़ू भी लगाना है, अपने कपड़े भी धोने, भिक्षा भी करनी है, लकड़ी भी लानी है, सारा काम करना है, भजन भी करना है, जप भी करना है, गायत्री करनी है, सब करना है, इतना सब काम करना, फिर टाइम से कैसे जाएंगे। दूसरा साधु बोला, उनका क्या है, बोल दिया, पत्नी रोटी बना के दे देती है और लक्ष्मण लकड़ी लेके आ जाते हैं, खा पी करके आसन पर बैठ जाते हैं, भाषण देते, काम धाम कुछ यानी पका पकाए मिलता है, हमको खुद सब कुछ करना पड़ता है। चौथा बोला, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे उनके पास एक पत्नी है अपने पास भी होना चाहिए, अपने पास पत्नी रहेगी, कपड़े टाइम से धो देगी, झाड़ू वो लगा देगी, लकड़ी वो ले गई, कुकिंग वो कर देगी, हम टाइम से कथा में आ जाए। तो सब ऋषि मुनियों ने, ये सब विंध्याचल पर्वत के ऋषि मुनि हैं, और विंध्याचल पर्वत पर पारसमणि पत्थर पाया जाता है, पारसमणि कहते हैं, इस पत्थर को आप लोहे से लगाएंगे तो सोना हो जाता है, सब पत्थर पूरा पहाड़ इसी का है, आज भी है, आज भी पत्थर पाया जाता है, लेकिन हमको खबर नहीं, हमको खबर होगी तो हम तो जड़ से ही उखाड़ देंगे पहाड़। तो सब ने एक एक पारसमणि पत्थर लिया, कहा कि आज हम भगवान को बोलेंगे, चरण रखो, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर से ही प्रकट हुई थी, इससे हम भी पत्थर ले। तो जिसको जैसी पत्नी चाहिए थी, जिसको मोटी चाहिए थी बड़ा पत्थर ले गया, जिसको लंबी चाहिए थी लंबा ले गया, जिसको खिटखिट वाली चाहिए थी एकदम तीखा पत्थर ले गया, जिसको जैसी पत्नी पसंद है उस हिसाब से पत्थर का डिजाइन बना करके लोग ले गए और जाके भगवान के चरणों के सामने रख दिया। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुने भय मुनि बृंद सुखारे वह शिला सब चंद्रमुखी परसय पद मंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जीव करुणा करी कानन को पगुधारे। अपना चरण इन पत्थरों पर लगाइए। भगवान को बहुत दुख हुआ, ये भक्त लोग मेरी कथा सुनने के लिए नहीं आते, मेरी बीवी को देखने के लिए आते हैं, इनकी नजर मेरी कथा पर नहीं है, ये मेरी कथा पर कान थोड़ी लगाते हैं, इनकी नजर रहती है मेरी पत्नी और मेरे भाई पर, मेरी कुटिया के अंदर मैं क्या खा रहा हूं क्या करता हूं। भगवान को बहुत दुख हुआ, इतने बड़े बड़े तपस्वी लाखों सालों की तपस्या और इनकी मति ऐसी रहेगी, तो भगवान ने उनकी रक्षा का विचार किया। उस वक्त मारीच का स्मरण प्रभु ने किया, जो मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया था। तब प्रभु ने मारीच को आदेश दिया, हे मारीच, मेरी लीला तक गई है, इससे मेरी लीला को चालू करने के निमित्त तुम बन जाओ। और ये भगवान का नाम जपता था, भगवान ने जैसे इधर से आदेश दिया, तुरंत इसने सुन करके उस आदेश को स्वीकार कर लिया। और इतने में भगवान की लीला शुरू हुई, मारीच की कुटिया में रावण आ गया और अपने मामा मारीच को बोला कि तुम अभी पंचवटी जाओ और सोने का मृग बनो। सुन मारीच निशाचर भाई, चलो मोर संग जहां रघुराई, जहां भगवान राम रहते हैं, मुझे सीता का हरण करना है। इसने कहा, मैं एक बार गया था तालिका के साथ, सुबाहु के साथ, उस बात तो मैं बच के आ गया, लेकिन 100 जन दूर मेरे को फेंक दिया, तुम हमको दोबारा वहां भेजना चाहता है? मैं वहां जाऊंगा मतलब इस बार भगवान मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रावण ने कहा, उधर से वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तू इधर से नहीं गया मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर गया, विचार करने लगा, क्या करेगा, हमारे साथ भी मारीच जैसी स्थिति है। मारीच ने विचार किया, मरना तो है ही ना एक दिन, और दोनों ही तुला राशि के हैं, रो वाले, वो राम ये रावण, तो कौन से रो के हाथों मरने से मेरा कल्याण होगा, क्योंकि ये वाले रो के हाथों तो मैं नरक में चला जाऊंगा, ये जो सामने खड़ा है, इसलिए वो वाले रो के हाथों ठीक रहेगा। इसे रावण से कहा, ठीक है, जो तुम्हारा काम हम कर देंगे। और सोने का मृग बन के गया और भगवान ने इसका कल्याण कर दिया, भगवत धाम चला गया। और सीता की खोज करते हुए प्रभु आगे आते हैं, बाली कुमारा चिति जल पावक गगन समीरा। बाली ने पूछा प्रभु से, हम दो भाई, हमारा आपसी बैर है, और आप बीच में हमसे पंगा क्यों लिया? कारण कवन नाथम हो मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हम दोनों भाई, हमारी आपस की लड़ाई है, मैंने आपसे बैर किया, आपको कभी गाली दी, आपकी पत्नी का हरण किया, मैं अपने भाई की पत्नी को लाया हूं, तो मैं भाई भाई हम निपट लेंगे, आप बीच में क्यों आते हैं? तब प्रभु ने धर्म का उपदेश दिया कि मैं धर्म रक्षक हूं, मुझे ही इस धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए तुझे मैं दंड दूंगा। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई, तिनके वध कछु पाप न होई। जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है उसको मारने से पाप नहीं होता है। कई दफे हम विचार करते हैं, भगवान ने बाली को मारा क्योंकि सुग्रीव को पत्नी को रखा था, तो हमारी बहू बेटी में भी कोई गलत नजर रखेगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, हमारे विचार है कि नहीं? हमारी पत्नी पर, हमारी बेटी पर, हमारी बहू पर कोई आदमी गलत नजर देखता है आंख फोड़ देंगे, भगवान ने बाली का फोड़ दिया था। मारने का अधिकार किसको है? जो व्यक्ति खुद ही काम नहीं करता। हम दूसरे की बहू बेटी पर गलत नजर रख सकते हैं, हमारी बहू बेटी पर कोई गलत नजर रख देगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, हम उसकी फोड़ देंगे, जो हम गलत काम करते हैं हमारी आंख कौन फोड़ेगा? यानी हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ये समाज में है कि नहीं? यानी हमारी बहू बेटी, हमारी घर की औरत पर आपने गलत नजर क्यों रखा? और तेरी आंख तो आंख फूटी गई बिल्कुल, तू तो देखता ही नहीं किसी। सलनी बोली सुई को कि सुई सुई तुम्हारे अंदर एक छेद है, सुई ने कहा तेरा तो नाम ही छलनी है, तेरे तो छेद ही है तभी छलनी हुई ना तू। तो समाज में व्यक्ति अपना दोस्त नहीं देखता, दूसरे का एक दोस्त छेद है, अपना तो देख कितना छेद तेरे अंदर है, कोई भक्त थोड़ा गड़बड़ कर देगा बिल्कुल पाखंडी है, तू उससे भी 1000 गुना पाखंडी है। हम अपने को देखते नहीं, कोई भक्त संत महात्मा शरीफ आदमी कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, ऐसा किया ऐसा, और हम दिन से सुबह से शाम तक क्या किया इसी कहीं गिनती नहीं। इसलिए अपना दोष पहले अपने सुधार, हमारे सनातन धर्म में यही कहा, अपना सुधार। ये काम कौन कर सकते हैं? प्रभु कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। इसे प्रभु ने बाली को मारा और उसकी पत्नी को उपदेश दिया, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम शरीरा, कि पांच तत्वों से शरीर बना है और एक दिन इसको मर जाना है। और बाली से प्रभु ने कहा, जब बाद में गलती मान लिया, शरणागत हो गया, मुझसे गलती हो गई, तो भगवान ने माफ कर दिया। कहा, बाली तुम कहो तो हम तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। देखो भगवान का निर्मल स्वभाव है, भट्टस्य पश्यति गुरु न पिना पराधान सेवा मना गपि कितांग बहुधा विपेति आविष्करोति पिशु नहीं सुभि ना विशुयां शिले ने निर्मल मती पुरुषोत्तमोयं। भक्त दशामत चंद में रूप गोस्वामी बात कहते हैं, भगवान का हृदय इतना निर्मल है। जैसे अकड़ की बात कर रहा था, भगवान ने भी अकड़ की बात किया। जैसे शरणागत हो गया, भगवान का हृदय पिघल गया। कहा, तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर देता हूं। तब बाली ने प्रभु से कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल मुख राम आवत नाही। आप इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, मैं साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। अगर मैं इस वक्त शरीर छोड़ दूंगा तो आपके धाम चला जाऊंगा। अगर मैं अमर हो गया, हो सकता है मैं किसी राक्षस के हाथों मारा जाऊं। अमर हो जाऊंगा, कितने बुरे काम और करूं तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। आपके हाथों मर के मेरे पाप भी नष्ट हो गए और आपके हाथों मर के मैं सीधे आपके धाम चला जाऊंगा। इससे मैं अमर होना नहीं चाहता, इसी वक्त मरना चाहता हूं, ऐसा बाली ने कहा। कहा कि नहीं कहा पांडे जी? हाँ, ये प्रकांड विद्वान है मानस के। हारमोनियम नहीं है इधर, कहां गा रहा है? हारमोनियम होता तो हम ही गा लेते। तो उपदेश किया और फिर शबरी के पास प्रभु जाते हैं। कितने 10 मिनट तक कथा करनी है ना, 5 मिनट और, 5-10 मिनट आगे पीछे होगा चलेगा? खत्म ही कर दो ना पूरा। शबरी, शबरी का वर्णन है, शबरी का वर्णन कई शास्त्रों में है। शबरी प्रसंग पर ही 5 दिन की कथा होती है, अगर सारे ग्रंथों का नहीं छोड़ लिया जाए। एक भिलनी है, भील राजा की लड़की, और 9 साल की उम्र में इसने घर छोड़ दिया। 9 साल की उम्र में इसकी शादी तय हो गई। तो भीलों के नियमों के अनुसार, उन जंगली लोगों के नियमों के अनुसार, शादी में खुशी के मौके पर उत्सव में मांस परोसा जाता है। तो इनके पिता ने, इनके कुटुंब कबीले के लोगों ने बहुत बड़ा शादी का आयोजन किया है। तो तरह तरह के जानवरों को लेके आए हैं, 12 संगी, बकरी को तो कोई, बकरी के तो चटनी बनेगी और तो कुछ हिसाब ही नहीं। बड़े बड़े जानवर, 12 संगी, हाथी, घोड़े, और पूरा बाड़ा, कई हजार एकड़ जमीन में सब जानवर बंद हैं। चारों तरफ से गेट है, दीवार है, और बीच में 2-3 गेट दे रखे हैं, और एक मेन गेट बड़ा है। एक दिन शबरी उस बाड़ी की तरफ गई अपने घर से, देखा कि हजारों लाखों जानवर बाड़ी के अंदर बंद हैं, वो भी कई तरह के जानवर, जंगली जानवर। तो अपनी मां से पूछा शबरी ने कि मां, इतने सारे जानवर, ये किस लिए? कहा, बेटी तुम्हारी शादी है ना, तो हमारे कुटुंब कबीले के नियमों के अनुसार हम लोगों को मांस परोसना पड़ता है। तो इस मांस के तरह तरह के व्यंजन बनेंगे, इसलिए हमने विभिन्न तरीके के जानवरों को बुलाया है। तो हर जानवर का अलग अलग मांस, अलग अलग वैरायटी में बनेगा। वैरायटी आप लोग जानते हो, जिसने खाया होगा। तो शबरी ने विचार किया, शादी हम दोनों की और इतने हजारों लोगों की हत्या। अच्छा, आज मेरी शादी हुई, 50,000 जानवर आज कटेंगे, फिर शादी के बाद हमारा बच्चा होगा, फिर उसके जन्मदिन पर लाखों कटेंगे, फिर हर साल बच्चे का जन्मदिन होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो हमेशा इतने जानवर कटेंगे। तो मैं मरने मरने तक करोड़ों करोड़ों जीवों की बद्दुआ की पात्र बनूंगी, मेरी जीवन खराब हो जाएगा। सबनी ने विचार किया, इधर ही स्टॉप करना चाहिए इसको, पाप को। आधे रात्रि में अपने घर से गई और बाड़े का जो मेन गेट था उसका दरवाजा खोल दिया उसने, गेट बड़ा गेट। तो जैसे ही गेट खोल दिया तो सारे जानवर गेट से बाहर जाने लगे और ये लड़की गेट पर खड़ी थी। जब वो जानवर बाहर को जाने लगे तो इस बच्ची को आशीर्वाद देते जाने लगे, सब ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटी तुमने हमको इस बाड़े से मुक्त किया है इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तू जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। तो जानवरों के आशीर्वाद से उसको राम भक्ति मिल गई। इसलिए प्रत्येक जीव पर दया करना चाहिए, कुत्ते पे भी दया करना चाहिए। कुत्ते को रोटी फेंकिए पूछ लाता है, वो बोल नहीं सकता धन्यवाद या थैंक यू, लेकिन पूछ लाने का मतलब अपने को धन्यवाद देता है। इससे कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर जो हमारी वाणी में बात नहीं कर सकता उसको दया, क्योंकि जब तक जीवन में दया नहीं रहेगी जीवन का कोई मूल्य नहीं। मक्का मदीना द्वारिका बद्री और केदार बिना दया सब झूठ है कही मलूक विचार। आप हजारों तीर्थाटन कर लीजिए, करोड़ों रुपए का दान कर लीजिए, रोज भागवत कथा सुनिए, अगर मन में दया नहीं है तो ये सब बेकार, कोई मिले नहीं। दया कैसे आती है? दया आने का भी एक फॉर्मूला है। दया शब्द का ठीक उल्टा करिए, क्या हुआ? भगवान को याद करने से दया आ जाती है। इससे जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वही दयालु होता है। इसका मतलब यह है जो भजन नहीं करता, फालतू फालतू काम करता है भजन के अलावा, अगर आप उसको दयालु कहें तो ये गलत बात है। उसकी दया में कपट हो सकता है, छल हो सकता है, उसकी दया हमारा नाश कर सकती है, लेकिन भगवान के भक्त की दया से ही हमारा कल्याण होगा। इसे श्री प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर दया की कि आज हमारा कल्याण हो गया, बाकी किसी ने हमारे ऊपर दया नहीं की। इसे प्रभुपाद जी के ऋणी हम लोग रहे, महापुरुषों के ऋणी हम लोग रहेंगे। इन्होंने त्याग किया, वो अपने बच्चों के लिए अमेरिका गए, घर का खर्चा नहीं चल रहा था इसलिए अमेरिका गए, जगत के कल्याण के लिए गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कितने लोगों ने उनको क्या क्या कहा। एक फिल्म वाले ने तो अभी मर गया कुछ दिन पहले, इसने पिक्चर भी बना दी, दम मारो दम हरे कृष्ण हरे रम, राम को रम बना दिया। तो ये सब सुना उस महापुरुष ने, किस लिए? क्योंकि जगत के प्रति दया है, इसे सब सुना। एक परिवार में हम अपने बच्चे की सुनते हैं, पत्नी की सुनते हैं, भाई की सुनते हैं, क्यों? क्योंकि परिवार चलाना है ना, इसलिए जगत का कल्याण करना है। लोगों की क्या क्या खरी खोटी सुननी पड़ेगी, अगर हम दो चार की खरी खोटी सुन के भगवान का भजन छोड़ देंगे इसको दया थोड़ी कहते हैं। जो दया करता है भला करता है वो कभी भी प्रशंसा का पात्र नहीं होता, उसकी प्रशंसा भगवान करते हैं, साधारण आदमी नहीं करता उसको। इसलिए दया करने के लिए भगवान को याद करना पड़ेगा। वो याद क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और शबरी ने घर छोड़ दिया, मतंग ऋषि के आश्रम में गई और कई लाख साल तक इसने भजन किया। ये ऋषि मुनियों के आश्रमों में सेवा करती है, झाड़ू लगाती है, लकड़ी बीन के लाती है, रात्रि में कर देती है सब। पहले ही मतंग ऋषि से नहीं मिली, क्योंकि उस समय महिलाओं को भजन करना मना था, किसी भी आश्रम में महिलाओं का प्रवेश मना था, कोई भी महिला सामने से गुजर जाए किसी ऋषि मुनि ने देख लिया तुरंत स्नान करता था, ऐसी प्रथा थी। जब तो उस वक्त सबरी ने कि मुझे कौन आश्रम में रखेगा, मुझे कौन दीक्षा देगा, तो ये क्या करती, जब सब ऋषि मुनि लोग सो जाते तो आधे रात्रि में जाके उनके आश्रमों को साफ कर देती, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाती, लकड़ी की गठरिया उनकी किचन में रख देती, पानी भर देती, वो टॉयलेट जिस मार्ग से जाते थे दिशा मैदान उन मार्गों को साफ कर देती। तो कई ऋषि मुनियों ने कुछ दिन तो ध्यान नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया, अरे कि सुबह जब हम उठते हैं सब पानी भरा हुआ मिलता है, लकड़ियां तैयार मिलती है, ये कौन काम करके जाता। तो सब इंक्वायरी हुई कि कौन ये काम करके जाता, तो सब आश्रम थे, कई सौ आश्रम है आस पास, तो सब इंक्वायरी हुई कि रात को ये पानी लकड़ी ये सब सफाई करके जाता कौन। तो मीटिंग बुलाई सब साधुओं ने, भाई कौन ये करके जाता है, आपके आश्रम के लोग तो हमारा आश्रम साफ करके नहीं जाते। तो सब ने एक ही बात कही, हम कोई भी रात को ना झाड़ू लगाते हैं, ना पानी भरते हैं, ना आश्रम साफ करते हैं, हमारे जैसा होता कोई, मैं बोलता मैं ही करता हूं सब साफ नाम कमाने के लिए। लेकिन ये सब लोग सच्चे थे, इतना झूठे नहीं बोलते थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग पानी नहीं। सब दासों को बुलाया, सब भक्तों को बुलाया, सब ने कहा नहीं नहीं हम ये काम नहीं करते। तो सब संतों ने, ज्यादातर संतों ने विचार किया कौन मीटिंग बिठाए, इंक्वायरी करे, अपने को पानी भरा हुआ मिलता है ना, लकड़ी भी नहीं मिलती है, सफाई की भी मिलती है, चेला लोगों ने भी कहा अपने को काम किया हुआ मिलता है, तो खोजबीन करने की जरूरत क्या है, काम होने दो। लेकिन इन ऋषियों में एक मतंग ऋषि है, इन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया कि कोई हमारी सेवा करके जाता है, ये है कौन, क्योंकि सेवा करने वाला फोकट में सेवा नहीं करेगा। हम किसी घर में काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, किसी को कुछ काम कर देंगे उसके बदले में कुछ लाभ लेते हैं, तो भगवान की सेवा भी कोई लाभ से की जाती है। हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, उनको पैसा नहीं देते लेकिन उनके भजन का फल कट जाता है। हम प्रणाम करते हैं किसी भक्त को, प्रणाम का मतलब थोड़ी कि तंबू जैसा खड़ा रहे, मेरे को सब प्रणाम करते हैं, एक प्रणाम से जितना दिन भर जप किया है ना, एक प्रणाम से चला जाता है। अगर 10 आदमी ने आपके चरण छुए तो समझो 15 दिन की कमाई चली गई, अगर 16 वाला ठीक ढंग से किया, क्योंकि फ्री में कोई सेवा नहीं करता। मतंग ऋषि ने विचार किया ये हमारी तपस्या के फल को खाने वाला है कौन है, अपनी तपस्या पे विचार करने लगे। इसे अपने शिष्यों से कहा आज रात को घेराबंदी करो, पकड़ो उसको, और ये अर्धरात्रि में सेवा करने आती थी। मतंग ऋषि के शिष्यों ने इसको पकड़ लिया रात को, अंधेरी रात को, अब पकड़ करके कहा चलो हमारे गुरु जी के पास। कांपने लगी बात, डर गई, पता नहीं क्या सजा देंगे, और पकड़ करके मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ऋषि ने सबरी को देखा तो थर थर कांपने लगी, बहुत डर गई, ऐसी डर गई जैसे इसने कोई महाजुर्म किया होगा। मतंग ऋषि ने जब इसका चेहरा देखा, पूरा शरीर देखा, इसकी कंपन को देखा, इसके हाव भाव को देखा, तब मतंग ऋषि ने कहा आज मेरे लाखों सालों की तपस्या, मेरा घर छोड़ना सब सफल हो गया, तेरा दर्शन मुझे आज हो गया। क्योंकि सबसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, भगवान के भक्त का दर्शन होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई कहे कि मैंने सब कुछ बहुत कमा लिया, क्या कमाया, वैसी भक्त के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है, भगवान के किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आना उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमको सही सही भजन मार्ग पर लगा। इसलिए मतंग ऋषि अपने को धन्य करने लगे, आज मैं धन्य हो गया ऐसी लड़की पाकर। इसलिए कहा बेटी बहुत डर गई, मैं नीच जाति की हूं, भिलनी हूं, हमारा तो स्पर्श भी आपको, हमको देखना भी आपके लिए पाप है। तब मतंग ऋषि ने कहा तुमको नीच कहने वाला नीच हो सकता है लेकिन तुम कभी नीच नहीं हो सकती मतंग ऋषि, और अपने आश्रम के कोने में उसको रहने के लिए कहा कि इधर भजन करो और इधर बैठ करके कथा सुना करो। और दूसरे ऋषि मुनि लोग सब भड़क गए कि औरत को अपने आश्रम में रखा है, अब ये ऐसा आश्रम तो नहीं है, वो तो हजारों एकड़ का आश्रम है, कोई कोने में वो रहती है, लेकिन इतना कड़क उसमें शासन था कि नहीं वो उस परिधि में, उस एरिया में भी नहीं रह सकती। तो मतंग ऋषि का पूरे साधु समाज ने परित्याग कर दिया। चेला लोगों ने भी कहा मतंग ऋषि से आप लोग साधु समाज की बात मान जाइए, आपका त्याग कर रहे हैं। मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा तुम भी उनके साथ चले जाओ लेकिन मैं कभी भी सबरी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये लोग मेरा त्याग कर दें। इनको भक्ति मालूम ही नहीं है, भक्ति किसको कहते, मुझे आज भक्त का दर्शन हुआ है, मैं उसको छोड़ करके इन लोगों की बात मान लूं? इसलिए उस पूरे साधु समाज का त्याग कर दिया और सबरी मतंग ऋषि के साथ भजन करती है। और एक दिन मतंग ऋषि शरीर छोड़ करके भगवत धाम चले गए। कहा, बेटी आज के ठीक 10,000 साल बाद भगवान हमारे आश्रम में आएंगे। और सबरी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे ले चलो। कहा, नहीं नहीं, भगवान हमारे आश्रम में आएंगे, उनका कोई स्वागत सत्कार करने वाला होना चाहिए। आश्रम में किसी को नहीं देखेंगे, सुना सुना देखेंगे तो भगवान को बुरा लगेगा, इसे भगवान की सेवा के लिए तुमको यहाँ रहना है। तो मतंग ऋषि का आदेश पाकर के सबरी आश्रम में रहती है, रोज बेड़ तोड़ती है, रास्ते साफ करती है। कैसे? जैसे भगवान अभी आने वाले होंगे। और एक दिन भगवान आश्रम में पधारे, दर्शन दिया और सबरी से कहा, मेरे पास 9 रत्न हैं, बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये मैं रत्न किसको दूं, किसी के पास हीरे जवाहरात सोने के जेवर हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आप किसको जेवर संभालने को दोगे, किसी को भी चाय वाले को दे जाओगे रत्न बाद में ले लो, या पनवाड़ी को दे दोगे 10 दिन के लिए रखो बाद में दे देना, लाखों करोड़ों के जेवर है, कोई जिम्मेदार आदमी को दोगे ना। इससे भगवान के पास भी 9 जेवर हैं, बहुमूल्य रत्न हैं। इससे प्रभु ने विचार किया, कहा सबरी से, मैं बहुत दिनों से तिजोरी ढूंढ रहा था, तिजोरी नहीं मिली, कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं मिला, आज मुझे जिम्मेदार आदमी भी मिल गया और तिजोरी भी मिल गई है। तिजोरी क्या है? सबरी की भक्ति ही भगवान की तिजोरी है। इसे भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु समनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसी का चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन तजिय कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमाई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब विधि छल हेना, मम भरोस ही हरसन दीना। ये 9 प्रकार का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में अपने सहपाठियों को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। यही उपदेश भगवान ने सबरी को दिया और सबरी भजन करती है। इसे पहला भजन है भगवान के भक्तों का संग करना। जो भगवान का भजन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, उनका संग करना, और उनका संग करने के बाद दूसरी रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथाओं में रति होना, रुचि होना, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन कथा में रुचि कब होगी? जब पहले भक्त का संग होगा तब कथा में रुचि होगी। कोई कहे कि मैं भक्त का संग नहीं करूंगा, मैं कथा सुनूंगा, कथा का आयोजन करूंगा, पैसा खर्चा करूंगा, सब मेरा रहा, कथा करो, लेकिन मैं भक्त के साथ नहीं बैठेगा, तो उसका ये सब खर्च कोई काम का नहीं है। पुण्य फल मिलेगा, स्वर्ग तक जा सकता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्रेम की प्राप्ति कब होगी? जब प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहले भगवान के भक्तों की संगति करना, तब उनके मुख से कथा सुनने से भगवान की कथा में प्रेम होता है, रति होती है। एक होता है राग, एक होता है अनुराग। राग में जो आदमी गाता है वो कुछ टाइम के लिए हमको हमारा एंटरटेनमेंट कर सकता है, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें रति नहीं होगी। लेकिन भगवान के भक्त अनुराग में भजन करते हैं, अनुराग में कीर्तन करते हैं, तो उनका कीर्तन और भजन हमारे हृदय में रति उत्पन्न करेगा, जिससे हमारा कल्याण होगा। और कथा सुनने के बाद हम किसी गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, अमानी भाव से सेवा करना। अमानी भाव क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम अनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये अमानी भाव है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उपजते। ये अमानी भाव से सेवा की जाती है। और भगवान के नाम पर विश्वास होना, गुरु जी ने हमको जप करने के लिए दिया,
तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अब हमने विचार किया ये भी जाप करेंगे, अभी नवरात्र भी चल रहे हैं, तो देवी दुर्गा दुर्गा चामुंडा चामुंडा चामुंडा, तो लड़के का एडमिशन ऐसे हो जाएगा, फीस उधर चामुंडा से आ जाएगी और चंडिका से कुछ और काम हो जाएगा और कोई मंडिका से कुछ दूसरा काम हो जाएगा, बाद में भगवान से बात कर लेंगे। भगवान के नाम पर उसी माला पर पूर्ण विश्वास होना कि यही नाम जो गुरु जी ने नाम मुझे दिया है इस नाम में सब आ जाएगा। पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, मुंह से खाने में पेट में जाने से पूरे शरीर में अन्न चला जाता है, वैसे भगवान का भजन करने से जप करने से कीर्तन करने से सब देवी देवताओं का फल इसी में आ जाता है। इधर उधर घूमने का जरूरत है, 1000 के नोट में सब नोट आ गए, 500 भी आ गया, 100 भी आ गया, 50 भी आ गया, 20 भी आ गया, 10 भी आ गया, 1 रुपए का कॉइन भी इसमें आ गया 1000 के नोट में, तो इधर उधर कॉइन ढूंढने की जरूरत है, 1000 का नोट जेब में डाल के घूमो, कोई भारी नहीं कुछ नहीं। अब 1000 के कॉइन लेके घूमो उठा सकते हो, हाथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने के, सीधे सीधे 1000 का नोट जेब में डालो, मतलब भगवान का कीर्तन भजन करिए, 4 नियमों का पालन करिए, भगवान की सेवा करिए, ये सारे फल हमको हम देगा नाम हमको सब देगा। सपने में भी किसी का दोष मत देखो, दोष देने का अधिकार किसको है, जो उस दोष को दूर कर सकता है। जैसे रोगी का रोग बताने का अधिकार किसको है, डॉक्टर को, क्योंकि वो उसका इलाज कर सकता है। रोगी रोगी का इलाज बताएगा, तू कैंसर पेशेंट है, बोलेगा तू टीबी वाला है, बोला तू बीबी वाला है, ऐसे इलाज होगा? इलाज कैसे होगा, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। इससे हमारे दोष निवृत्ति कैसे होगी, जो हमारे दोषों को दूर कर सकता है वो कौन है, गुरु हो सकते हैं, भगवत हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, कोई ज्येष्ठ वैष्णव हो सकता है। इसलिए भगवान के भक्त कभी डांटे, हमारा सीनियर हमको कभी डांटे, भजन करता तो हमारा कल्याण होगा। नित्यानंद प्रभु ने एक बार एक भक्त की छाती पर लात मार दी तो भक्त ने चरण पकड़ लिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं तुझे लात मारी तो मेरे चरण पकड़ता है। भक्त ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, इसीलिए तो लात मारी। आप आज तक मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, मुझे बहुत इज्जत देते थे, मान देते थे, मैं समझता था इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आज आपने मुझे अपना समझा इसलिए तो मेरा दोष आपसे देखा नहीं गया, इसलिए आपने मेरी लात मारी है, ये लात भी मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे विश्वास हो गया है कि आपने मुझे अपना लिया है। अगर कोई भक्त गुरु हमको डांटता है समझना चाहिए हमसे प्यार करता है, कोई हमको इज्जत देता है मान देता है, सिर्फ पैसे बटुआ साफ करना चाहता है तो मीठी मीठी बात करेगा, डांटेगा थोड़ी हो, क्योंकि उसको तो राम पराया माल अपना राम नाम जपना। जो भक्त हमारा बुरा भला चाहता है वो डांटेगा भी, ये गलत कर रहे हैं आप, यहां पर ये गलत है, अगर हम अपना भला चाहते हैं तो सुनो, नहीं चाहते हैं तो उल्टा बोलो, बड़ा आया पहले अपने आप को देख लो, बस जवाब तो कही है ना, तो इन बातों से भक्ति नहीं होगी। सपने वो नहीं देखे पर दोषा, सीधे सरल भाव से रह करके सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहे, इधर उधर करवट बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अपने को 4 फुट का बनाया है, 5 फुट का होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बाप 4 फुट का है, हमारी माँ 3.5 फुट की है, हम 5 फुट क्यों होना चाहते हैं, क्या हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं है? फिर हमको बोलेगा तेरा बाप, तुम अपने बाप की औलाद नहीं, हमको बुरा लगता है नहीं लगता, तो लंबा क्यों होना चाहते हैं, तो हमारी पिताजी 4-4.5 फुट के, तो अपनी लंबाई भी 4.5 फुट रहने दो, वो लंबू की गोली खाने की क्या जरूरत है। एक बार एक गोली चली थी, सब जो लंबा होना चाहते हैं गोली खाइए, लंबा कोई हुआ नहीं, बिस्तर में जरूर लंबे हो गए, कोई लंबा नहीं होता है। इस संधि सुधा तेल का एडवर्टाइज आता है रात को, घुटने पर लगाओ 2 फाड़ चिपक जाएगा, आता नहीं आता, वो जितने बोलने वाले हैं वो सब पैसा लेते हैं बोलने के लिए। मैंने संधि सुधा मंगाया था, जितनों के घुटनों पर लगाया और टेढ़े हो गए वो, तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसे कोई मतलब नहीं, इसे भगवान का भजन चुपचाप करना चाहिए।
और रामचंद्र जी की कथा आपको सुनाता हूँ। भगवान का एक नाम है संकोची नाथ। देखो भगवान बहुत कड़क भी हैं, निर्मल भी हैं और बहुत संकोची भी हैं। जैसे छोटा बच्चा संकोच करता है ना, ये भी भगवान का एक स्वभाव है। कि रामानंद संप्रदाय के एक वैष्णव हैं, उनके मुख से मैंने कथा सुनी थी। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, रंग महल अयोध्या की बात है, सीता जी ने कहा राम जी से कि आज मैं राम बनना चाहती हूं और आप सीता बनिए। राम जी ने कहा ऐसी खुरापत तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई, तुम हमको बनना चाहते हो, मैं सीता बनूं? मेरे को तो साड़ी पहनना आता नहीं और मुझे सब आता नहीं पेटीकोट वगैरह पहनना। सीता जी ने कहा वो सब मैं पहना दूंगी, आपको सीता बनना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो सीता जी ने भगवान का श्रृंगार ऐसा किया, अपने कपड़े सब रामचंद्र जी को पहना दिए और खुद राम जी के कपड़े पहन लिए और सुंदर रत्न जड़ित दर्पण के सामने, शीशे के सामने दोनों बैठ गए। अब वशिष्ठ जी भगवान का ध्यान करते हैं। व्यवहारिक लीला में तो वशिष्ठ जी गुरु हैं और रामचंद्र जी उनके शिष्य हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो उस वक्त राम जी ब्रह्म हैं, भगवान वशिष्ठ जी उनके भक्त हैं। तो सुबह मंगल आरती में ब्रह्म मुहूर्त में वशिष्ठ जी ने ध्यान किया तो देखा कि आज भगवान दूसरे रूप में। वशिष्ठ जी ने बार बार आंख बंद की, बार बार खोला, बार बार आंख की, बार बार खोला, कहा कि रामचंद्र जी सीता और सीता रामचंद्र जी से उल्टा रूप में दिख रहा है मेरे, क्योंकि हमारे जैसा तो ध्यान है नहीं वशिष्ठ जी का, उनका तो वही दिखेगा ना जो भगवान जिस रूप में है। वशिष्ठ जी ने कई बार प्रयास किया, हो सकता है मेरी नजर में मेरी आंखों कुछ तकलीफ हो। बार बार देखते हैं तो रामचंद्र जी सीता बने हैं और सीता जी राम बने। वशिष्ठ जी ने विचार किया मुझे ये ध्यान जो छोड़ करके मुझे भगवान की कमर में जाकर के उनके कक्ष में जाकर देखना चाहिए कि भगवान इस रूप में है या नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत अपने स्थान को छोड़ा और जहां भगवान राम और सीता रहते थे रंगमहल में प्रवेश किए। अब रामचंद्र जी के महल में सिक्योरिटी कितनी होगी, लेकिन गुरु वशिष्ठ को तो कोई रोक नहीं सकता, जो भगवान के दर्शन महाराज के गुरु उनको कोई रोक सकता है? तो किसी सिक्योरिटी वाले ने रोका नहीं वशिष्ठ जी को और सीधे सीता राम के कक्ष में चले गए गेट पर। और दरवाजे के बाहर एक कोई सेवक बैठा था, सेवक से कहा हम इसी वक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हो। तो तुरंत सेवक ने दरवाजा खटखटाया, बाहर से आवाज दी गुरु जी आए हैं आपको मिलना चाहते हैं। भगवान ने सीता से कहा सारी पोल खुली नहीं खुली अभी, अगर हम दरवाजा खोलते हैं मेरे को इस रूप में वशिष्ठ जी देखेंगे तो डांट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सीता जी ने कहा जल्दी जल्दी हमारे कपड़े बदलो। तो सीता जी ने तुरंत राम जी के कपड़े उतारे, खुद पहने, अपने कपड़े राम जी को पहनाए और तुरंत रूप चेंज हो गया। बस इतने में दरवाजा खोला, आइए गुरुदेव बैठिए। वशिष्ठ जी ने सर से लेकर पांव तक देखा, अरे मैंने ध्यान में तो दूसरा दर्शन किया, इधर दूसरा कैसे हो गया? वशिष्ठ जी बार बार देखने लगे, मैंने ब्रह्म बेला में जिस रूप का चिंतन किया वो रूप कुछ और था, ये रूप कुछ और है, ये एकदम इतने थोड़ी सी देर में बदल कैसे गया? वशिष्ठ जी विचार करने लगे, पांव से सर तक देखने लगे। तो जब सर पर देखा तो सीता जी मांग का सिंदूर पोछना भूल गई राम जी का और वशिष्ठ जी की नजर सिंदूर पर लग गई। और वशिष्ठ जी ने कहा धन्य है राम, धन्य है, और प्रणाम करके चले गए। अब रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी ने मुझे सिंदूर में देख लिया करके इतने शर्मा गए कि कई महीनों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं गए, दरबार में भी नहीं गए। सब दरबारियों ने कहा वशिष्ठ जी आप कुछ करिए, वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। तो वशिष्ठ जी फिर रामचंद्र जी के पास गए, कहा बेटा राम वो सिंदूर वाली लीला सिर्फ मैं ही जानता हूं और किसी को मालूम नहीं है, इसलिए बाहर आओ। तब जब वशिष्ठ जी ने विश्वास दिलाया कि मेरे अलावा ये बात को कोई नहीं जानता, भगवान क्या समझे उन्होंने सबको बता दिया होगा, वशिष्ठ जी ने कहा मैं सिर्फ जानता हूं, इसलिए आप निसंकोच होकर के राज दरबार में पधारिए। तो भगवान का एक संकोची स्वभाव भी है, छोटे बच्चों की तरह शर्मा भी जाते हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं विभिन्न। और रावण का वध किया, अयोध्या पर शासन किया, रावण को मारने के बाद राज दरबार में प्रभु ने सब बंदरों से, लंगूरों से, रीछ भालुओं से कहा, तुमने सीता की खोज में, धर्म की लड़ाई में मेरा बहुत साथ दिया, मेरे साथ बहुत दुख तकलीफें तुम लोगों ने उठाई, मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने सेवा मांगी, किसी ने गिफ्ट भी मांगा। जामन जी से पूछा, आप भी कुछ मांगिए। जामन जी ने कहा, पूरी लड़ाई में मैं आपके साथ जरूर था, लेकिन अपनी टक्कर का कोई धक्का मुक्की करने वाला मिला नहीं। मैं रावण से धक्का मुक्की करना चाहता था, अगर मैं उससे भिड़ जाता तो आपके लिए क्या रहता, इसलिए आपके टक्कर में उससे भी धक्का मुक्की हुई नहीं, इसे मैं चाहता हूं आप मेरे साथ थोड़ा धक्का मुक्की करो। भगवान ने कहा, हमारी पिता तुल्य हो तो आपकी सेवा करने के बजाय मैं आपसे घुसाबाजी करूं क्या? भगवान ने कहा, फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर अगले अवतार में देखूंगा। फिर दूसरे अवतार में भगवान और जामवंत के पिता बनते हैं, जाम्बुवती। जाम्बुवती से जब शादी की तब जामवंत की हड्डी पसी सब तोड़ देते हैं भगवान। तो कहा कि वो पिछले टाइम का, इस बार मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हनुमान जी की बारी आई, सीता जी ने हनुमान जी को एक रत्न जलित हार दिया, बहुत महंगा बिस्कीमती हार। दरबार में सब लोगों ने कहा, माता जी ने हार इसको क्यों दे दिया बंदर को, बंदर क्या जाने आदर का साथ, इतना महंगा बिस्कीमती हार हमको देते, किसी को देते, बंदर को पकड़ा। और हनुमान जी को जैसे हाथ हाथ में लगा हार, तो उस हार को परखने लगे, फिर उसको तोड़ने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना कीमती हार, इसका डिजाइन बनाने में ही करोड़ों रुपया लगा है, ये बंदर तोड़ता जाता है। तो दरबार में श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान जी आप इस इतने अच्छे सुंदर डिजाइन वाले हार को क्यों तोड़ रहे हैं? कहा, मैं इसमें देख रहा हूं कि मेरे सीताराम कहीं है कि नहीं, जो मेरे इष्ट देव है सीताराम, इस हार में वो कहां पर रहते हैं, जरा ढूंढा। तो दरबार में श्री कृष्ण ने कहा, जहां सीताराम होंगे उसी चीज को आप लोगे, जहां सीताराम नहीं होंगे उसको नहीं लोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, जहां पर सीताराम नहीं होंगे, जिस वस्तु में नहीं होंगे, जिस स्थान पर नहीं होंगे, वो वस्तु मेरे काम की नहीं, वो स्थान मेरा काम कर। दरबार में श्री कृष्ण ने कहा, तो आपके शरीर भी आपके काम का नहीं, ये सीताराम के आपके शरीर में ही बसते हैं? हनुमान जी ने कहा, मेरे शरीर में जितने बाल हैं एक एक बाल में सीताराम वास करते हैं, प्रमाण। तब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ दी, चीर के दिखाया, जो सीताराम सामने बैठे हैं दरबार में वही मेरे हृदय में भी बैठे हुए हैं। देख, इसका हनुमान जी ने कहा, ये हार मेरे किसी काम का नहीं, आपके लिए कीमती हो सकता है, लेकिन इसमें सीताराम नहीं दिखते हैं, इसलिए ये हार मेरे किसी कीमत का नहीं, फेंक दिया। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम उनकी दी हुई वस्तु नहीं है। भगवान प्रेम भी करते हैं, प्रीति भी करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उससे सब कुछ छीन लेते हैं, अपने को दे देते हैं, जिससे प्रीति करते हैं अपने को छोड़ के संसार दे देते हैं। विभीषण को सोने की लंका दे दी और एक महीने बाद कहा, विभीषण कब तक जाने का विचार है? अब तुमको एक महीना हो गया अयोध्या में, लंका में जाओ, आप वहां के राजा हो, सोने की लंका आपको संभालनी है। एक महीने बाद विभीषण को भगवान ने कहा, जाओ यहां से, सोने की लंका में रहो। और हनुमान जी से कहा, तुम मेरे पास रहो। देखो, विभीषण के पास सोने की लंका है, रावण के पास दूसरा नंबर विभीषण का है। विभीषण की संसार में कोई पूजा करता है? हनुमान जी के पास पहनने के लिए धोती नहीं है, पूरी जगत उनकी पूजा करते, क्योंकि सब कुछ त्याग करके जो प्रभु के शरणागत हो जाता है, अपना प्रेम प्रभु उसको देते हैं, इससे जगत उसकी पूजा करता है। भगवान की भक्ति से संसार भी मिलेगा, सब सुख वैभव मिलेगा, लेकिन कब तक? जब तक ये शरीर है, उसके बाद हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए प्रेम, भगवान का प्रेम क्या है, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके भक्तों की सेवा, उनके विग्रह का दर्शन, यह हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे शरीर में उतर जाए, हमारे सांसों में उतर जाए, इसी से मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। और यही आज की रामनवमी की कथा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9:30 तक कहा था, हमने 10:30 बजा दिया, मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा 3-4 घंटे बोलने की आदत है। वो तो अभी यहाँ ढोल का चमटा वगैरह नहीं था, नहीं तो मैं 6 घंटे कर देता था। तो कीर्तन गाओ और फिर जाएंगे, फिर अभिषेक होगा, मैं भी जुहू को चला जाऊ। राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ताली बजाओ और गाओगे। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का। राम चरण यह जीवन सपने की माया, यह
जीवन सपने की माया,
यह जीवन सपने की माया,
यह जीवन सपने की माया।
नींद खुले कसू नहीं भजन कर भाई,
खुले सुनाई भजन कर भाई।
राम यह जीवन जंगल की लकड़ी,
यह जीवन जंगल की लकड़ी,
यह जीवन जंगल की लकड़ी,
यह जीवन जंगल की लकड़ी।
आग लगे जली जाई भजन कर भाई,
भजन कर भाई।
राम चरण सुख दाई राम।
यह जीवन कागज की नौका, यह जीवन कागज की नौका, हवा चले उड़ जाई भजन
की निताई गाढ़ प्रेमानंद जगत उसल प्रभुपाद की।
तो बोलने में कोई चूक या कोई शब्द ऐसा जो आपको ठीक न लगे तो हमको माफ कर देना, ठीक। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्णा।